परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और विशेष करके उन नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने अब तक तीसरे अध्याय के 11 पद तक का अध्ययन किया है और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस परमेश्वर के आरोपों को हमें बता रहा है और पिछले अध्ययन में हमने 3 आरोपों को देखा था और अब परमेश्वर के चौथे आरोप को हम इस अध्ययन में देखेंगे। मित्रों, आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, उन्होंने बाहरी मार्ग पकड़ लिया है, उन्होंने उस मार्ग का त्याग कर दिया है जिसे वे जानते थे कि सही है। प्राचीन जनजातियों की परंपरा में है कि युगों पूर्व कभी उनके पूर्वज जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को जानते थे। मेरे मित्रों, यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो आप जानते हैं कि आप वह नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए। आप करेंगे भी नहीं जबकि आप जानते हैं कि वह क्या है। आप पथ भ्रष्ट हो गए हैं, मनुष्य पथ भ्रष्ट हो गया है। यह परमेश्वर का चौथा आरोप है। अब हम देखेंगे पांचवा आरोप, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। निकम्मे से अर्थ है सड़ा हुआ फल। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि सब के सब सड़ गए हैं। मुझे फल बहुत अच्छे लगते हैं और आशा करता हूं कि आप सब भी फल पसंद करते हैं, विशेष करके पपीता। परंतु वह पक कर सड़ने लगता है, तब उससे बुरा और कुछ नहीं होता। मनुष्य रसीला फल नहीं है, वह सड़ चुका है। संपूर्ण पृथ्वी का न्याय यही कहता है। अब हम देखते हैं छठवीं आरोप अर्थात छठवां आरोप, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। मेरे मित्रों, यह 3 गुना नकारात्मक है। मनुष्य उन यात्रियों के दल की नाई है जो सही मार्ग से विपरीत दिशा में जा रहा है। उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता करे। प्रभु यीशु ने अपने समय के धार्मिक अगुओं से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 14 पद में, अंधा अंधे को मार्ग दिखाए। संपूर्ण पृथ्वी का न्याय आपसे, मुझसे, वरन पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक मनुष्य से यही कहता है। अब पौलुस हमें परमेश्वर की आरोग्य शाला में ले आता है और महान वैद्य के हाथों में छोड़ देता है। यह एक आत्मिक आरोग्य शाला है। यह महान वैद्य कहता है कि हम आत्मिक रोगी हैं। आइए हम पढ़ें रोमियो के पत्र 3 अध्याय उसका 13 पद। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। मेरे प्रियो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह पहली बात क्या कहता है, मुझे नियमित जांच के लिए आना होगा क्योंकि मुझे बीमारी है और उसके बीमारी के कारण इलाज की आवश्यकता है। डॉक्टर के पास जाना होता है तो आप डॉक्टर से क्या कहते हैं, अब यह मेरे लिए एक प्रथा बन जाता है। कि वहां जाऊं और वह मेरी जांच करे। क्या आप जानते हैं कि वह मुझसे पहली बात क्या कहता है? अपना मुंह खोलो। तब वह एक लकड़ी का चम्मच लेकर के मुंह में डाल करके देखता है। तब वह कहता है कि अपनी जीभ निकालो, और तब वह उसकी भी जांच करता है। इसी प्रकार यह महान वैद्य प्रभु यीशु परमेश्वर भी करता है। क्या आप जानते हैं कि वह क्या कहता है? उनका गला खुली हुई कब्र है। क्या आपने कभी मानव देह को सड़ते हुए सूंघा है? एक बार मेरी कलीसिया का सेवक सेवा में था। उसने मुझे फोन करके कहा कि उन्हें एक बालिका का शव मिला, और मुझे मौका मिला कि मैं उस जंगल के करीब जा करके उस शव को देखने पाया। वे उसे खोद कर निकालना चाहते थे। मैं वहां पहुंचा, वह देह कई दिन तक दबा हुआ था, शव सड़ गया था। ओह, वह भयानक दशा थी। मैंने कभी भी मनुष्य के सड़े हुए शव की दुर्गंध नहीं सूंघी थी, अतः मेरा जी मिचलाने लगा। मैं इस पद के संबंध में सदा ही उस दृश्य के बारे में सोचता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देखकर यह नहीं कहता, ओह कैसा सुंदर एवं आकर्षक बालक या बालिका है। वह कहता है, तू खुली हुई कब्र के समान सड़ रहा है। किसी विचारक ने कहा है, यदि हम स्वयं को वैसे देख पाए जैसे परमेश्वर देखता है, तो हम अपने आप को सहन नहीं कर पाएंगे। पौलुस यहां यही कह रहा है। आगे हम देखते हैं, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। मेरे मित्रों, यह दूसरी बात मेरा डॉक्टर मुझसे कहता है, मेरा गला देखने के बाद में अपनी जीभ बाहर निकालो। हमारा महान वैद्य मानव जाति से यही कहता है, अपनी जीभ बाहर निकालो। और मनुष्य की जीभ देखकर वह कहता है, आपकी और मेरी जीभ तुम्हारे होठों में सांपों का विष है। मैं अनेक बार चिड़ियाघर गया हूं और वहां शैतान जैसे सांपों के विष दंत देखता हूं और उनमें उपस्थित विष की कल्पना करता हूं। मित्रों, यदि आप दर्पण में अपनी जीभ देखें तो वह विषैले सर्प के से हैं और उससे भी कहीं अधिक भयानक दिखाई देती है। वह आपकी मर्यादा की हानि नहीं पहुंचाएगा, वह आपकी देह को नष्ट कर सकता है। आपकी जीभ से आप किसी की मर्यादा को नष्ट कर सकते हैं। मेरे विचार में आज हमारी कलीसिया में सबसे अधिक विषैला स्वभाव है पीठ पीछे बुराई करना। कुछ समय पूर्व मैंने किसी को राय दी थी कि वह किसी एक विशेष कलीसिया की सदस्यता न ले, क्योंकि मैं जानता था कि वहां संसार की सबसे अधिक बुराइयां होती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक मनुष्यों की मर्यादा भंग की। क्या आप जानते हैं वे कौन हैं? वे आत्मिक जन कहलाते हैं। मैं उन्हें आत्मिक दुराचारी कहता हूं, क्योंकि वे यही तो हैं। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। ओह, मनुष्य की जीभ कैसी विषैली है, वह कैसी भयानक हो सकती है। मेरे मित्रों, मैं आपकी जीभ के बारे में नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जीभ भी सांप के जैसे विषैला है, आप किसी को क्षति पहुंचा सकते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। यह चौथी बात है जो महावैद्य मनुष्य के विषय में कहता है। उसका मुंह श्राप, छल और झूठ से भरा हुआ है। उसकी जीभ के पीछे शैतानी और निस्सारता भरी है। वह श्राप देने की मानसिकता रखता है। यदि आप आज की चर्चा या विषय को सुने तो जानेंगे कि श्राप देना सबकी शब्दावली में है, चाहे वह श्रमिक हो या कॉलेज का प्राध्यापक हो। वे किसी भी भाषा की तुलना में निंदा की भाषा में दक्ष हैं। एक बार एक मनुष्य ने मुझे इस पद के संबंध में चुनौती दी। वह इसे सच नहीं मानता था, अतः मैंने उससे कहा, आओ हम परख कर देखें। हम वहां उस कोने में खड़े होकर जो भी आएगा उसके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे और परिणाम को देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि होगा वही जो परमेश्वर ने कहा है। अब परमेश्वर पांचवी बात बताता है, अर्थात कहता है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 15 पद में, उनके पांव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं। हम यशाया 59 उसके 7 पद में भी देखते हैं जो असंक्षिप्त वर्णन करता है, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। जी हाँ, मनुष्य का कैसा चरित्र चित्रण है। निर्दोष की हत्या को वे तत्पर रहते हैं। हम रोमियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश हैं। ध्यान दीजिए, मनुष्य अपने पीछे उजाड़ और विनाश छोड़ जाता है। हमने अभी अभी यशाया 59:7 में इस बात को देखा है। रोमियों 3:17 में लिखा हुआ है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। जी हाँ, मनुष्य शांति का मार्ग नहीं जानता। आज अपने चारों ओर देखें, मनुष्य आज शांति की बात कर रहा है, परंतु उससे शांति प्राप्त नहीं हुई है। समाचार पत्र पढ़ करके देखें मेरे मित्रों, संसार में शांति है ही नहीं, चारों तरफ परेशानियां और अशांति है। हम रोमियों के पत्र 3 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। जी हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस ने इस अंतिम विचार में मनुष्य के सब पापों को सारांश प्रस्तुत कर दिया है। मनुष्य को परमेश्वर का भय नहीं है। मनुष्य ऐसे जीवन जी रहा है जैसे परमेश्वर है ही नहीं। मनुष्य वास्तव में परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। मनुष्य का कैसा चित्रण है यह। मेरे मित्रों, अब हम पाप के बारे में पौलुस का अंतिम विचार देखते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य भी हैं जो कहेंगे हमारे पास व्यवस्था है और हम उसका ही पालन करेंगे, हम उसे ही थामे रहेंगे। हम रोमियों के पत्र 3 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। मेरे मित्रों, मनुष्य मूसा की व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। यह तो ऐसा है कि मनुष्य के लिए व्यवस्था डूबते को तिनके का सहारा सिद्ध हुई है। व्यवस्था उसे उबार नहीं सकती, वह तो वास्तव में विपरीत ही करती है। व्यवस्था को थामना ऐसा है जैसे मनुष्य हवाई जहाज से कूदते समय पैराशूट के साथ पर सीमेंट का बोरा लेकर कूद गया हो। मेरा विश्वास करें, व्यवस्था आपको नीचे खींचता है, वह मनुष्य को दोषी ठहराती है, वह मृत्यु की सेवा है। रोमियों के पत्र 3 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आज मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को चुनौती देता हूं जो कहता है कि उद्धार पाने के लिए व्यवस्था पालन आवश्यक है। इस पद की व्याख्या करें, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति या प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। जी हाँ, धर्मी ठहरने का अर्थ है उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के मानक पूरा करने के लिए उचित घोषित किया जाना। मेरे मित्रों, आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, मनुष्य के लिए यह असंभव है। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। फिर व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मनुष्य का उद्धार करने की अपेक्षा व्यवस्था मनुष्य को पापी दर्शाती है या ठहराती है। मेरे मित्रों, पद 20 और पद 21 में बहुत बड़ी खाई है। हम एक प्रकार से रात से दिन में प्रवेश करते हैं। अब पौलुस परमेश्वर के अद्भुत उद्धार की चर्चा करता है, वह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की चर्चा करेगा जो शेष अध्याय में सुव्यक्त किया जाएगा। आइए देखें परमेश्वर से धार्मिकता की प्राप्ति। रोमियों के पत्र 3 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, वह धार्मिकता, यूनानी भाषा में धार्मिकता में अंग्रेजी का द नहीं लगा है। इसका अर्थ है कि यह परमेश्वर का गुण नहीं है। वह कहता है कि वह अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटेगा। यह मनुष्य की धार्मिकता भी नहीं है। परमेश्वर यशाया में तो कह ही चुका है कि हमारी धार्मिकता अर्थात हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रणों के समान है। यशाया नबी की पुस्तक 64 अध्याय उसके 6 पद में हम इसे पाते हैं। परमेश्वर गंदे कपड़े एकत्र नहीं करता है। पौलुस किस धार्मिकता की बात करता है? यह वह धार्मिकता है जो परमेश्वर देता है। मसीह हमारी धार्मिकता बन गया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1:30 में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। और तब दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जी हाँ, हमारे लिए यह जान लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ही है जो यह धार्मिकता हमें देता है। यह आपका और हमारा या मेरा प्रयास नहीं है, परंतु यह परमेश्वर हमें देता है। वह धार्मिकता जो परमेश्वर चाहता है वह देता भी है। मेरे प्रियो, यह वह धार्मिकता है जो व्यवस्था से अलग है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप कुछ करके या विधि विधान का पालन करके इसे कमा नहीं सकते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करके भी। पहले तो आप यह जान ले कि आप व्यवस्था पालन नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं दे सकता है, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि आप उसके पालन में खरे नहीं उतर सकते हैं। परमेश्वर सिद्धता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करता है, और आप और मैं सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए व्यवस्था द्वारा हमारा उद्धार असंभव है। यशायाह नबी की पुस्तक 53:6-10 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे मित्रों, व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों ने इस धार्मिकता की गवाही दी जो परमेश्वर मसीह में उपलब्ध करवाएगा। हम रोमियो के पत्री 3:22 में पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। जब मैं युवा के रूप में परमेश्वर की सेवा करता था, तब सोचता था कि परमेश्वर का अनुग्रह को बहुत नीचे जाना पड़ेगा कि बड़े पापियों तक पहुंचे, परंतु छोटे पापियों तक पहुंचने के लिए नीचे जाने की आवश्यकता उसे नहीं होगी। परंतु अब मुझे समझ में आ गया है कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम सब तक पहुंचने के लिए तल तक नीचे जाना पड़ता है। हम में से हर एक जन मसीह के बिना पूर्ण रूप से भटका हुआ है। या तो आप मसीह में पूर्ण रूप से उद्धार पा चुके हैं, या मसीह के बिना पूरी तरह से भटके हुए हैं। हम सबको मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता है, इसमें अंतर नहीं है। जी हाँ, मसीह की धार्मिकता मसीह में विश्वास के द्वारा हम तक पहुँचती है। पूर्व काल के महापुरुषों ने इस धार्मिकता की उचित परिभाषा दी है। विलियम कनिंगम ने लिखा, व्यवस्था के अधीन परमेश्वर ने मनुष्य से धार्मिकता की आशा की, अनुग्रह के अधीन वह मनुष्य को धार्मिकता प्रदान करता है। परमेश्वर की धार्मिकता वह धार्मिकता है जिसे परमेश्वर की धार्मिकता उसे मांगने पर बाध्य करती है। जी हाँ, यह गहरी परिभाषा है, परंतु अच्छी है। महापुरुष डॉक्टर चार्ल्स होज ने यह परिभाषा दी, वह धार्मिकता जिसका परमेश्वर करता है वह उसके समक्ष उपलब्ध है, और जो उसकी स्वीकृति को पूरा करती है वरन सुरक्षित करती है। डॉक्टर ब्रुक्स की परिभाषा यह है, वह धार्मिकता जिसकी अनिवार्यता पिता को थी वह पुत्र बना, और पवित्र आत्मा उसका विश्वास दिलाता है तथा विश्वास उसे प्राप्त करवाता है। तब हम देखते हैं, डॉक्टर मूरहेड ने लिखा है, वहां सब जिसकी परमेश्वर आज्ञा देता है मांग करता है, स्वीकृति प्रदान करता है और स्वयं उपलब्ध कराता है, उन सब का कुल योग है। मेरे मित्रों, मेरे विचार में इन महापुरुषों ने धार्मिकता की जो परिभाषा दी है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब यह धार्मिकता जैसा हमने देखा है विश्वास के द्वारा प्राप्त की जाती है, कर्मों के द्वारा नहीं, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे रोमियो के पत्री 3:22-23 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे मित्रों, मैं इन पदों का स्वतंत्र अनुवाद करता हूं। परमेश्वर की धार्मिकता जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए प्राप्त की जाती है, क्योंकि मनुष्यों में अंतर नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा अर्थात स्वीकृति से रहित या वंचित हैं, और यह धार्मिकता कर्मों से नहीं विश्वास के द्वारा है। हम आगे पढ़ते हैं योहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 28 और 29 पद में यीशु ने एक प्रश्न किया है, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। इसका उत्तर देते हुए कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर की यह धार्मिकता प्राप्त करने के बारे में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपके विश्वास में कोई योग्यता है या आपकी श्रद्धा में कोई योग्यता है। विश्वास वास्तव में आपका कर्म नहीं है, महत्वपूर्ण बात तो आपके विश्वास का करता है। स्पर्जन ने इस प्रकार कहा, यह मसीह में आपकी आशा नहीं है जो आपकी उद्धारक है, यह मसीह ही है। यह मसीह में आनंद नहीं जो आपका उद्धारक है, यह मसीह है। यह मसीह में आपका विश्वास भी नहीं जो आपका उद्धारक है, यद्यपि वह साधन है। यह मसीह का लहू और उसका गुण है। मेरे मित्रों, इसे मन मस्तिष्क में अवस्थित कर लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह धार्मिकता वस्त्र स्वरूप है, यह सबके लिए उपलब्ध है, परंतु यह उन सब पर अवतरित होती है जो विश्वास करते हैं, और वह कहता है कि यह सबकी आवश्यकता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित और रहित हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पापियों में अंतर नहीं है। मैं एक घरेलू उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए कि हम एक खेल खेलते हैं, हम कन्याकुमारी से श्रीलंका तक कूदेंगे। आप कहेंगे कि यह असंभव है, आज तक कोई भी इतनी लंबी कूद नहीं कूद पाया है। आप में से कुछ लोग मुझसे अधिक लंबा कूद सकते हैं, परंतु श्रीलंका तक नहीं कूद सकते। अब जो सबसे लंबा कूदेगा वह भीग कर फिर तैर कर किनारे आएगा। निश्चय ही एक से अच्छा दूसरा होगा। यह बचपना तो अवश्य है ही कि ऐसी कूद में भाग लें और कहें कि मैं आपसे अच्छा कूदता हूं। मैं लगभग आधों से अच्छा हूं, परंतु इससे अंतर क्या पड़ेगा? आप परमेश्वर की महिमा तक तो पहुंच ही नहीं पाए। मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 24 पद में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। ध्यान दीजिए, सेंत मेंत, यही शब्द योहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 25 पद में आया है, जिसका अनुवाद वहां पर व्यर्थ किया गया है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने उसे व्यर्थ बैर रखा, सेंटमेंट बैर रखा, उसका कोई आधार ही नहीं था। यहां पौलुस कहता है सेंटमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं, अर्थात हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार ही नहीं है। परमेश्वर यह नहीं कहता, ओह वे कैसे भले मनुष्य हैं, मुझे उनके लिए कुछ अवश्य करना होगा। हम पहले देख चुके हैं कि हम में ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करें। मेरे प्रियो, यह हमारी गहन आवश्यकता है कि हम निराधार धर्मी ठहराए जाते हैं। यह केवल उसका अनुग्रह है, अर्थात हमारी कोई विशेषता नहीं कि हम धर्मी ठहराए जाएं। अनुग्रह अनुपरिचित पक्ष प्राप्ति है, यह क्रियाशील प्रेम है उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। छुटकारा या मुक्ति जो परमेश्वर के अनुग्रह से जुड़ी हुई है। परमेश्वर द्वारा हमारे उद्धार का कारण यह है कि मसीह ने हमें मुक्ति दिलाई है, उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है, वह हमें इसे उपलब्ध कराने के लिए क्रूस पर मर गया, सारे मानव जाति के लिए मर गया। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना वास्तव में हमारे पाप हरण अर्थात क्षमा दान से अधिक है। यह मसीह की धार्मिकता का हम में निवेश है। दूसरे शब्दों में, हम आदम की पूर्ववत अवस्था में ही नहीं लाए जाते, वरन मसीह में अव्यवस्थित किए जाते हैं, कि अनंत जीवन तक, अनंत काल तक परमेश्वर की संतान हो जाए। मेरे मित्रों, जॉन बनियन बहुत निराश था क्योंकि उसे यह बोध हो गया था कि वह एक बहुत बड़ा पापी है जिसमें अपनी धार्मिकता थी ही नहीं। इस मनोदशा में उसने कहा, जब परमेश्वर ने मुझे जॉन बनियन का वह रूप दिखाया जो परमेश्वर देखता था, तब मैंने यह नहीं कहा कि मैं पापी हूं, परंतु मैंने कहा कि मैं सिर के ऊपर से पांव के तलवे तक पाप हूं। और बनियन के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि पापों की क्षमा पाने के बाद भी वह परमेश्वर के समक्ष कैसे स्थान प्राप्त करेगा। पौलुस के वचन जो उससे स्मरण आए वे फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसके 9 पद से थे। लिखा था, और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं आगे, उसके अनुग्रह के द्वारा, जी हाँ, परमेश्वर के द्वारा हमारे उद्धार का मार्ग है। यह वह सोता है जहां से परमेश्वर का जीवन जल अनुग्रह के इस युग में प्रवाहित होता है। अतः परमेश्वर ने जो किया, अपना पुत्र मरने के लिए हमें दे दिया, अर्थात उसे इस जगत में भेज दिया। उसके द्वारा परमेश्वर अनुग्रह में होकर उद्धार कर पाता है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पत्रस ने इसराइल राष्ट्र से कहा, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, यह आज आपके लिए और मेरे लिए भी सत्य है, क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में प्रभु यीशु के अलावे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आज हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। वह सारे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ, किसी विशेष जाति, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। और इसलिए वचन में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार प्राप्त करेगा। जी हाँ, आज आपके लिए भी अवसर है कि आप उसे स्वीकार करें और उससे अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण करें, और निश्चय ही वह आपके जीवन में आशीषों की भरपूरी देंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में मसीह यीशु को जगह दिया है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तुम्हारा। जीवन मेरा।